नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स विशुद्धि मार्ग सब्बे संखारा अनिच्छाति यदा पञ्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। सारे संखार अनिच्च हैं, इस सत्य को जब कोई स्वयं की पैया से देख लेता है तब उसको दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। ऐसा है यह विशुद्धि मार्ग। सब्बे संखारा दुखाति यदा पञ्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। सारे संखार दुख हैं, इस सत्य को जब कोई स्वयं की पैया से देख लेता है तब उसको दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है। ऐसा है यह विशुद्धि मार्ग। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पञ्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनत्ता हैं, इस सत्य को जब कोई स्वयं की पैया से देख लेता है तब उसको दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है। ऐसा है यह विशुद्धि मार्ग। धम्म पद गाथाएं 227 से 279। समूची शिक्षा मुक्ति पर आधारित है। बुद्ध ने कहा है, जिस प्रकार महासागर का केवल एक ही स्वाद होता है, नमकीन स्वाद, धम्म शिक्षा का केवल एक ही स्वाद है, मुक्ति का स्वाद। लक्ष्य जागृति के चारों चरणों के मार्ग पदों एवं उनके फल पदों मग्ग फल की प्राप्ति है तथा उनके माध्यम से अंतिम निपान। इन्हें अंतर्दृष्टि साधना अर्थात विपस्सना भावना के अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। ग्रंथों में यह कई स्थानों में स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ धम्मपद से एक गाथा है, तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अखातारो तथागता पटिपन्ना पमोखंति झाइनो मार बंधना। तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तथागत तो मार्ग को मात्र आख्यात करते हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मार के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। आइए हम बुद्ध के उस प्रवचन को देखें जो इस गाथा के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है। गृहस्थ अनाथ पिंडिक द्वारा दिए गए जेतवन विहार में निवास करते समय बुद्ध ने यह प्रवचन दिया था। उन्होंने भिक्षुओं को बताया कि जो भी संस्कारित अर्थात अनुबंधित या निष्पन्न धर्मों अर्थात घटनाओं को स्थायी या नित्य पाली में निच समझता है उसके लिए अंतर्दृष्टि ज्ञान अर्थात विपस्सना ज्ञान से भर पाना संभव नहीं है। अंतर्दृष्टि ज्ञान के बिना आश्वासन पथ सम्मत नियम में प्रवेश असंभव है तथा आश्वासन पथ में प्रवेश किए बिना जागृति के चार चरणों जिनकी पराकाष्ठा पूर्ण जागृति में होती है अर्थात सोतापन्न सकदागामी अनागामी एवं अरहत पद का अनुभव करना असंभव है। अतः आप देख सकते हैं कि निब्बान का स्वाद चख लेने के बाद भी काफी काम बाकी रहता है, क्रमशः और भी चढ़ाई चढ़नी होती है। जो भी यह समझता है कि सभी संस्कारित धर्म अनित्य अनिच्च हैं तो उसके लिए यह संभव है। कारण एवं औचित्य है कि वह अंतर्दृष्टि ज्ञान से भर जाए जिससे वह आश्वासन पथ में प्रवेश करे तथा जागृति के चार चरणों के फल पदों का अनुभव करें। इसी प्रकार यदि कोई संस्कारित धर्मों को सुख समझता है, आत्मा पाली में अत्ता युक्त समझता है, तो उसके लिए सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर पाना असंभव है। किंतु यदि कोई संस्कारित धर्मों को असंतोषजनक या दुख तथा अनात्म पाली में अनत्ता समझता है, तो उसके लिए यह प्रशिक्षण पूरा करना संभव है। अंत में यदि निब्बान को असंतोषजनक या दुख माना जाता है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, कारण एवं औचित्य नहीं है कि कोई अंतर्दृष्टि ज्ञान से भर जाए जिससे वह आश्वासन पथ में प्रवेश करे तथा जागृति के चार चरणों के फल पदों का अनुभव कर सके। जब निब्बान को सुख के रूप में देखा जाता है, केवल तभी यह प्रशिक्षण पूरा करना संभव है। जाहिर है कि निब्बान का सुख दैनिक जीवन के संस्कारित धर्मों के सुख जैसा नहीं है। तो हम यह कैसे आत्मसात करें कि सभी संस्कारित धर्म नश्वर, असंतोषजनक एवं अनात्म हैं? आपको स्मरण होगा कि ये तीनों विशेषताएं एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। यदि एक समझ में आ गई तो दूसरों को भी समझना सरल हो जाएगा। अतः हम तीन में से केवल एक के अनुभव के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर सकते हैं। सही समझ का अर्थ है प्रत्यक्ष समझ, स्वयं का अनुभव। इन तीन विशेषताओं में से एक की सच्चाई का अनुभव उसके विषय में सिद्धांतों को स्वीकार करने से बहुत अलग सिद्ध होगा। सिद्धांत एवं मत सरलता से संशोधित, परिवर्तित या विकृत हो जाते हैं, गलत सिद्ध होते हैं अथवा उनके मिथ्या बोध होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव से हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारे साथ रहता है। हमने स्वयं क्या सिद्ध किया है इस विषय में हमें कोई संदेह नहीं होगा। अतः हमारा प्रयत्न होगा कि हमारी संवेदनाओं में जैसे जैसे परिवर्तन हो हमें उनका पता लगता रहे। यह वही कुंजी होगी जो हमारे लिए प्रत्यक्ष ज्ञान, अंतर्दृष्टि ज्ञान का द्वार खोलेगी। नश्वरता के विषय में जागरूकता। सयाजी उबाखी का हमारे लिए परामर्श यह है कि हम यथासंभव निरंतरता के साथ अनिच्च को जानते रहें। भिक्षुओं को बुद्ध का परामर्श यह है कि उन्हें सभी मुद्राओं में, चाहे वे बैठे हों, खड़े हों, चल रहे हों या लेटे हों, अनिच्च, दुख या अनत्ता की जागरूकता बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जाहिर है यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन तीन विशेषताओं में कौन सी विशेषता हमारे कर्मस्थान अर्थात ध्यान के विषय के रूप में कार्य करती है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रतिपल अनिच्च बोध करते रहें। अनिच्च बोध की निरंतरता ही जो दुख बोध एवं अनत्ता बोध की ओर ले जाती है, सफलता का राज है। महापरिनिर्वाण में जाने के पहले तथा अपनी आखिरी श्वास लेने के पहले बुद्ध के अंतिम शब्द थे वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। सभी संस्कार नाशवान हैं, अप्रमाद के साथ अर्थात आलस्य न करते हुए जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संपादन करो। वास्तव में उनके बुद्धत्व की 45 वर्षों की अवधि की समस्त शिक्षा का सार यही है। यदि आप सभी घटक वस्तुओं में निहित अनिच्च के विषय में जागरूकता बनाए रखें तो आपका कभी न कभी लक्ष्य तक पहुंचना सुनिश्चित है। इस बीच जैसे जैसे आप अपने अनिच्च की समझ को विकसित करते हैं, वैसे वैसे आपके प्रकृति के सत्य के ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी। अंततः यह उस सीमा तक विकसित होगा कि आपको तीनों विशेषताओं अनिच्च, दुख एवं अनत्ता के विषय में कोई संदेह नहीं रहेगा। उसके बाद ही आप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की स्थिति में हो पाएंगे। अब जब आप जान गए हैं कि अनिच ही प्रथम आवश्यक कारक है, तो आपको चाहिए कि अनिच क्या है उसे पूरी स्पष्टता के साथ एवं यथासंभव व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें, जिससे कि साधना करते समय या विचार विमर्श के समय कोई भ्रम न हो। अनिच का वास्तविक अर्थ है नश्वरता या क्षय, अर्थात ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु, चाहे वह चेतन हो या निर्जीव, उसमें नश्वरता या क्षय की प्रकृति अंतर्निहित है। कलाप। अनिच के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने भौतिक पदार्थों के व्यवहार से प्रारंभ किया तथा उनके अनुसार भौतिक पदार्थ आधुनिक विज्ञान द्वारा पाए गए परमाणु की तुलना में और भी सूक्ष्म हैं। इस ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु चेतन एवं निर्जीव दोनों कलापों से रचित हैं, जो उत्पन्न होने के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि कलाप चार प्रमुख भौतिक गुणों तथा उन पर निर्भर चार सहायक गुणों के संक्षिप्त समुच्चय हैं। किसी भी कलाप का जीवन काल मात्र एक क्षण है। एक मानव की पलक की एक झपकी की अवधि में एक खरब ऐसे क्षण होते हैं। वे सब सदैव परिवर्तन या प्रवाह की स्थिति में हैं। विपस्सना साधना में एक विकसित छात्र के लिए वे ऊर्जा की एक धारा के रूप में अनुभव किए जा सकते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, किंतु मानव शरीर में कोई सार तत्व नहीं है, बल्कि यह एक भौतिक स्कंध अर्थात रूप तथा जीवन बल अर्थात नाम के सह अस्तित्व की निरंतरता है। जब हम जानने लगेंगे कि हमारा शरीर सूक्ष्म कलापों से बना है जो सभी परिवर्तन की स्थिति में है, तो हम परिवर्तन या क्षय की वास्तविक प्रकृति को समझने लगेंगे। कलापों के निरंतर विघटन एवं प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन तथा क्षय होता है। सभी एक दहन की स्थिति में हैं, जिन्हें आवश्यक रूप से विषाद की पहचान या दुख सत्य समझना चाहिए। जब आप अस्थायित्व को दुख के रूप में अनुभव करेंगे, केवल तभी आप चार में से प्रथम आर्य सत्य अर्थात दुख सत्य का बोध कर पाएंगे, जिस पर बुद्ध की शिक्षा में इतना जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब आपको दुख की सूक्ष्म प्रकृति का एहसास होगा तथा यह एहसास होगा कि संस्कारित होने के नाते आप इससे एक पल के लिए भी बच नहीं सकते, तो आप अपने अस्तित्व के प्रति सही अर्थ में भयभीत, घृणापूर्ण एवं अनिच्छुक हो जाएंगे तथा ऐसे मार्ग की तलाश करेंगे जो मुक्ति दिलाकर दुख से बाहर ले जाए। मनुष्य जीवन में भी उस स्थिति को जान पाना तथा उसका स्वाद चख पाना संभव है। यह तब होता है जब कोई जागृति के पहले चरण सोतापत्ति या सोतापन्न पद को प्राप्त करता है। तब आप इतने विकसित हो सकेंगे कि आंतरिक शांति या असंस्कारित पद निब्बान में जा सकें। किंतु सकारात्मक परिणाम अत्यंत शीघ्र दिखाई पड़ेंगे। जैसे ही आप अपने दैनिक जीवन में अनिच के प्रति जागरूकता बनाए रखने में सक्षम होते हैं, आपको स्वयं पता लगने लगेगा कि शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों में आपके भीतर एक श्रेयस्कर परिवर्तन हो रहा है। यहाँ आपका ध्यान मुख्य रूप से शरीर की संवेदनाओं पर अर्थात भौतिकता के परिवर्तनशील स्वरूप पर होता है। कभी कभी मात्र संवेदनाओं में परिवर्तन पर ध्यान होगा, अन्य समयों पर आपका ध्यान उन विचार तत्वों पर होगा जो संवेदनाओं की परिवर्तनशील प्रक्रिया पर प्रक्षेपित हैं। जब आप भौतिक पदार्थों में परिवर्तन पर मनन कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि उस जागरूकता के साथ साथ उत्पन्न होने वाले जो विचार तत्व हैं वे भी अवस्थांतर या परिवर्तन की स्थिति में हैं। ऐसी परिस्थिति में आप मन और पदार्थ नाम रूप दोनों में अनिच्छ का बोध कर रहे हैं। 6 ज्ञानेंद्रियों अर्थात नेत्र कान नाक जिह्वा शरीर या मन में से किसी भी एक के माध्यम से अनिच्छ बोध विकसित करना संभव है। तथापि व्यावहारिक रूप से हमने पाया है कि सभी प्रकार की संवेदनाओं या संवेगों में शरीर के घटक भागों के साथ स्पर्श के संपर्क के माध्यम से उत्पन्न होने वाली संवेदनाएं अंतर्दर्शनात्मक ध्यान के लिए एक व्यापक क्षेत्र में विस्तृत हैं। न केवल क्षेत्र विस्तृत होता है अपितु ये संवेदनाएं भी अधिक स्पष्ट होती हैं। वास्तव में ये संवेदनाएं शरीर के भीतर कलापों के घर्षण विकिरण तथा प्रकंपन की परिणाम है तथा सदैव परिवर्तनशील है। विपस्सना ध्यान की साधना प्रारंभ करने वाला व्यक्ति शरीर की संवेदनाओं के माध्यम से अनिच्छ बोध और अधिक सरलता से प्राप्त कर सकता है। कोई भी किसी अन्य साधन द्वारा प्रयास करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु हमारा परामर्श है कि इसके पहले कि आप किन्हीं अन्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रयास करें, आपको चाहिए कि शरीर की संवेदना के माध्यम से अनिच्छ बोध में अच्छी तरह स्थापित हो जाए। अंतर्दृष्टि ज्ञान के 10 स्तर। विपस्सना में ज्ञान प्राप्ति के 10 स्तर हैं। 1 निकट निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा अनिच्छ दुख तथा अनत्ता का ज्ञान, पाली में सम्मसन प्रथम चरण है। 2 दूसरा चरण पदार्थ एवं मन रूप एवं नाम की उत्पत्ति तथा विघटन का ज्ञान है। जब भी हम अपनी संवेदनाओं में हो रहे परिवर्तनों का अनुभव करते हैं तो हम इस स्तर उदय व्यय पर होते हैं। 3 चरण पदार्थ एवं मन की तीव्र परिवर्तनशील प्रकृति का ज्ञान है। यह एक तीव्र प्रवाहमयी धारा या स्फुरित ऊर्जा के रूप में अनुभव होता है। इस स्तर भंग पर क्षय पहलू या कलापों का विघटन सबसे प्रमुख है। 4 चूंकि हमारे मन और शरीर के सभी पहलू अवास्तविक अनुभूत होते हैं, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि यह अस्तित्व ही बहुत भयानक है, भय। 5 हम यह जानने लगते हैं कि यह अस्तित्व ही बुराइयों से भरा आदिनव है। 6 हम जानने लगते हैं कि यह अस्तित्व घृणास्पद निबिध है। 7 हम जानने लगते हैं कि इस अस्तित्व से बचने की तत्काल आवश्यकता है, मुंचित कम्यता। 8 हम समझते हैं कि अब अनिच्छ को आधार बनाकर मुक्ति के लिए जी जान से पूरी तरह काम करने का समय आ गया है, पटी संख्या। 9 हम समझते हैं कि हमें सभी संस्कारों से स्वयं को पृथक करने के लिए तथा अहंकार से अलग होने संखार उपेक्षा के लिए मंच अब तैयार हो गया है। 10 तथा अंत में हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है जो लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में तेजी लाए, अनुलोम। जो लोग अल्प समय में ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं उन्हें इन 10 चरणों का पता सिंहावलोकन द्वारा होगा। जब आप अनिच्छ बोध में अपनी प्रगति करते हैं तो समय समय पर एक योग्य आचार्य द्वारा समायोजन एवं सहायता के माध्यम से आप इन 10 स्तरों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपको किसी भी प्रकार की उपलब्धि के पूर्वानुमान से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रतीक्षा से अनिच्छ की जागरूकता की निरंतरता से आपका ध्यान विचलित होगा। मात्र यह निरंतर जागरूकता ही आपको वांछित लक्ष्य दिला सकेगी। गृहस्थ के रूप में साधना, किंतु आप में से सभी लोग अल्प समय में अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अतः आइए हम गृहस्थ के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए यहीं और अभी काम करने के तरीके को देखते हैं। सर्वप्रथम हमें अपने भीतर अनिच्च जगाना होगा, अर्थात अपनी आंतरिक अस्मिता को अनिच्च में अनुभव करना होगा, तथा अंततः यह हमें अपने भीतर और बाहर शांति और संतुलन की स्थिति में लाएगा। यह लक्ष्य अनिच्च की अनुभूति में तन्मयता द्वारा प्राप्त होगा। आज जब विश्व को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से अनेक मानव जाति के लिए भयावह हैं, अब समय परिपक्व है कि प्रत्येक व्यक्ति विपस्सना साधना करे तथा यह सीखे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच शांति का एक गहरा कुंड कैसे पाया जाए। अनिच्च प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, यह प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर है। अनिच्च का अनुभव करें, अनिच्च में तन्मय हो जाएं, तो विचारों की बाहरी दुनिया से कटकर निकलना संभव हो जाएगा। अनिच्च जीवन की वह मणि होगा जिसे आप एक शांत एवं संतुलित ऊर्जा के भंडार के सृजन हेतु निधि की तरह सजोएंगे, जिससे स्वयं का तथा समाज का कल्याण हो। जब अनिच्च को समुचित रूप से विकसित किया जाता है तो वह आपके शारीरिक एवं मानसिक दोषों के मूल पर प्रहार करता है तथा शनै शनै उन सभी बुराइयों को दूर करता है जो आपकी शारीरिक और मानसिक रुग्णताओं के स्रोत हैं। बुद्ध के समय सावस्ती पाली में सावत्थी तथा आसपास के देहात की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ थी। उनमें से लगभग 5 करोड़ आर्य थे जो जागृति के पहले चरण में पहुंच गए थे। अतः विपश्यना करने वाले गृहस्थ जनों की संख्या भिक्षुओं की संख्या से भी अधिक रही होगी। मात्र उन्हीं व्यक्तियों के लिए अनिच्च आरक्षित नहीं है जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया हो। उन कमियों के बावजूद जो गृहस्थ जीवन को आजकल व्याकुल बना देती हैं, कोई सक्षम आचार्य या गुरु एक अपेक्षाकृत कम समय में अनिच्च सक्रिय कराने में छात्र की सहायता कर सकते हैं। एक बार सक्रिय हो जाने पर साधक को मात्र उसे संरक्षित रखने का प्रयास करने की आवश्यकता होगी, किंतु उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी उसे अवसर प्राप्त हो वह विपस्सना ज्ञान के तीसरे स्तर के लिए काम करे। पदार्थ एवं मन की तीव्र गति से परिवर्तनशील प्रकृति भंग के ज्ञान के साथ यह स्थिति आती है। यदि आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तब कोई समस्या नहीं होगी या कम से कम होगी, क्योंकि तब आपको बिना अधिक प्रयास के ही अनिच्च का अनुभव लगभग स्वतः करने में सक्षम हो जाना चाहिए। इस स्थिति में अनिच्च आपका आधार बन जाएगा, जहां आप अपने दैनिक जीवन की घरेलू आवश्यकताओं के समाप्त होते ही शीघ्र वापस आ सकते हैं। हालांकि यदि आप अभी तक भंग की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं तो आपके लिए कुछ कठिनाई की संभावना है। आपके लिए भीतर का अनिच्च तथा शारीरिक एवं मानसिक बाहरी गतिविधियों के बीच यह केवल एक रस्साकशी की तरह हो जाएगा। अतः आपके लिए इस आदर्श वाक्य का पालन करना विवेकपूर्ण होगा। जब आप काम कर रहे हों तो काम करें, जब आप खेल रहे हों तो खेलें। आपके लिए सदैव अनिच्च सक्रिय करना आवश्यक नहीं होगा। यदि आप इसे दिन तथा रात में नियमित समय या समयों के लिए सीमित रखें तो यह पर्याप्त होना चाहिए। कम से कम इस अवधि में मन तथा ध्यान को शरीर के भीतर विशेष रूप से अनिच्च बोध के साथ रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपका अनिच्च बोध क्षण प्रतिक्षण होना चाहिए, इतना निरंतर कि आप किसी भी तर्कमूलक या ध्यान भंगकारी विचारों के प्रक्षेप की अनुमति न दें, क्योंकि वे आपकी प्रगति के लिए निश्चित रूप से हानिकारक हैं। यदि यह संभव नहीं है तो आपको वापस अपने श्वास के बोध का अर्थात सति का अभ्यास करना होगा, क्योंकि अनिच्च की कुंजी समाधि है तथा अच्छी समाधि के लिए शील उत्कृष्ट होना चाहिए, चूंकि समाधि शील पर बनी है। अच्छे अनिच्च के लिए समाधि अच्छी होनी चाहिए, यदि समाधि उत्कृष्ट है तो अनिच्च बोध भी उत्कृष्ट होगा। पूर्ण रूप से संतुलित मन के उपयोग तथा साधना की विषय वस्तु पर ध्यान के प्रक्षेपण के अतिरिक्त अनिच्च सक्रिय करने के लिए कोई अन्य विशेष तकनीक नहीं है। विपस्सना में कर्मस्थान अर्थात ध्यान का विषय अनिच्च है, अतः यदि आप शरीर की संवेदनाओं पर अपना ध्यान वापस लाने के अभ्यस्त हैं तो आप सीधे अनिच्च का अनुभव करने में सक्षम हो जाएंगे। पहले आप शरीर के उस भाग या क्षेत्र में अनिच्च का अनुभव करें जहां ध्यान केंद्रित करना सरल हो, फिर सिर से पैरों तक तथा पैरों से सिर तक ध्यान के क्षेत्र को बदलते रहें। कभी कभी अपने शरीर के भीतर अंगों की भी जांच करें। शरीर रचना पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष ध्यान पदार्थ अर्थात कलापों की उत्पत्ति पर तथा उनके निरंतर परिवर्तनशील स्वभाव पर होना चाहिए। यदि इन निर्देशों का पालन होता है तो प्रगति निश्चित रूप से होगी, किंतु प्रगति अतीत की पारमिताओं या पारमी पर तथा इस साधना में आपकी निष्ठा पर भी निर्भर करती है। यदि आप ज्ञान के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी तीनों विशेषताओं अर्थात अनिच्च, दुख एवं अनत्ता को समझने की शक्ति में वृद्धि होगी तथा तदनुसार आप लक्ष्य के अर्थात आर्य पद के यानी जिसने निर्वाण को चख लिया है के निकटतर आते जाएंगे। इस लक्ष्य को आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। आज सुबह केवल इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।